दलित और नारी जीवन पर केंद्रित भारतीय साहित्य, स्वस्थ जनतांत्रिक मूल्यों की तलाश। 20वीं सदी के अंत में व 21वीं सदी के आरंभ के समय हम आज यहाँ दलित व नारी जीवन पर केंद्रित भारतीय साहित्य पर विचार हेतु एकत्रित हुए हैं। बम्बई, बंगलोर या हैदराबाद जैसे महानगर में यह संगोष्ठी हो रही होती तो इसके विषय संबंधित जिज्ञासा कम होती, किंतु उत्तर भारत के इस क्षेत्र के लिए यह विषय अपेक्षाकृत नवीनता लिए हुए है। भारतीय साहित्य में दलित व नारी जीवन पर केंद्रित रचनाएं न सिर्फ आधुनिक काल में मिलती हैं, वरन भारतीय साहित्य के आरंभ से ही जीवन के इन पक्षों की अभिव्यक्ति होती रही है। संस्कृत, पाली व प्राकृत साहित्य में भी दलित व नारी जीवन पर केंद्रित रचनाएं मिलती हैं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के आदि, मध्य व आधुनिक काल में भी इन रचनाओं की प्रचुरता है। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि को दलित जीवन का अनुभव प्राप्त था तो मध्यकालीन संत व भक्त कवि कबीर, रविदास, तुकाराम, नामदेव आदि भी दलित जीवन की पीड़ाओं से परिचित थे। आदि व मध्यकालीन भारतीय समाज में नारी भावनाओं को अक्का, महादेवी, नलदयद व मीराबाई आदि ने वाणी प्रदान की, लेकिन आज जिन अर्थों में दलित साहित्य व नारीवादी या नारी केंद्रित साहित्य की चर्चा होती है उसका आरंभ 20वीं सदी के 6वें व 7वें दशक में होता है। आधुनिक संदर्भों में नारी व दलित केंद्रित साहित्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा सबसे पहले इस सवाल से मुखातिब भी हुआ जा सकता है कि दलित साहित्य व नारीवादी साहित्य अलग अलग ही इतना विशाल है, फिर उस पर अलग अलग गोष्ठियाँ आयोजित न करके एक ही गोष्ठी में विचार क्यों किया जा रहा है। इस गोष्ठी में पढ़े जाने वाले आलेखों में भी संभवतः यह प्रश्न उठाया गया है। दलित व नारी जीवन पर केंद्रित साहित्य पर एक ही संगोष्ठी में विचार का एकमात्र आधार दोनों ही सामाजिक समूहों की उत्पीड़न की स्थिति का है। स्त्री का उत्पीड़न वर्णगत संदर्भ में भी होता है व लिंग के आधार पर भी। दलितों का उत्पीड़न वर्गगत स्तर पर भी है व जाति के आधार पर भी। दलित स्त्री का उत्पीड़न वर्ग, जाति व लिंग तीनों स्तरों पर होता है। नारी उत्पीड़न विश्व के उन्नत देशों में भी होता है, लेकिन एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों में उत्पीड़न अधिक गंभीर है। दलितों के उत्पीड़न की तुलना उन्नत देशों में काले लोगों से रंगभेद के आधार पर किए जा रहे उत्पीड़न से भी की जा सकती है। इसीलिए दलित साहित्य विश्व के निग्रो साहित्य से अपनी निकटता महसूस करता है। दलित समूह व नारी दोनों उत्पीड़ित हैं, किंतु उत्पीड़न के ढंग व तौर तरीके भिन्न हो सकते हैं। दलित नारी व उच्च वर्गीय नारी लिंगभेद के आधार पर समान रूप से उत्पीड़ित है, किंतु वर्गीय आधार पर दलित नारी उच्च वर्गीय नारी के हाथों उत्पीड़ित होती है। इसी प्रकार दलित समूह वर्गीय व जातिगत आधार पर कथित उच्च वर्गों से उत्पीड़ित होते हैं, किंतु उनकी अपनी सामाजिक संरचनाएँ दलितों द्वारा ही दलितों के उत्पीड़न की स्थितियाँ भी पैदा करती हैं। यहाँ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि हजारों वर्षों से चले आ रहे दलित व नारी उत्पीड़न को प्रतिबिंबित करने वाले साहित्य पर क्या इससे पहले विचार नहीं किया जाता रहा? जरूर किया जाता रहा है। साहित्य की यथार्थवादी और प्रगतिशील परंपरा के अंतर्गत ऐसे साहित्य पर व्यापक रूप से विचार होता रहा है, लेकिन यथार्थवादी परंपरा में दलित व नारी उत्पीड़न व उसके साहित्यिक प्रतिबिंबन को आर्थिक विषमताओं के अमूर्त दायरे में ही देखा जाता रहा व उसका समाधान आर्थिक विषमताओं को दूर करने में देखा जाता रहा। किंतु दलित व नारी उत्पीड़न के मसले इतने सरल न होकर काफ़ी जटिल व पेचीदा हैं व हमारे समाज की सांस्कृतिक संरचनाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। आर्थिक विषमताएं दूर कर लेने पर भी सांस्कृतिक संरचनाएं इतनी आसानी से नहीं बदलती। अतः दलित व नारी की सांस्कृतिक मुक्ति का प्रश्न एक बड़ा जटिल प्रश्न है, जिस पर अमूर्त ढंग से नहीं मूर्त ढंग से विचार किया जा सकता है। वह ऐसे साहित्य की गहरी पड़ताल अनिवार्य है जिसमें दलित व नारी जीवन प्रतिबिंबित हुआ है। दलित व नारी जीवन पर केंद्रित साहित्य के अध्ययन के लिए कई प्रश्नों का सामना करना जरूरी है। जैसे पहला, क्या केवल स्त्रियों द्वारा स्त्रियों संबंधी रचित साहित्य ही नारीवादी साहित्य है, या किसी पुरुष लेखक द्वारा नारी जीवन पर अत्यंत संवेदनशीलता से रचा साहित्य भी नारीवादी साहित्य के दायरे में शामिल हो सकेगा। दूसरा, इसी प्रकार क्या केवल जाति पर दलित स्तर पर दलित लेखकों द्वारा रचित साहित्य ही दलित साहित्य कहलाने का अधिकारी है, अथवा किसी भी लेखक द्वारा दलित जीवन को संवेदनशीलता से चित्रित करने पर उसका साहित्य दलित साहित्य की श्रेणी में माना जाएगा? वैसे दलित साहित्य के अधिकांश लेखक व विद्वान अब दूसरी धारणा अर्थात दलित जीवन को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने वाले किसी भी लेखक के लेखक लेखन को दलित साहित्य मानने के पक्षधर हैं। तीसरा, दलित व नारी जीवन पर केंद्रित साहित्य का समाजशास्त्र व मनोविज्ञान क्या है? अपने सामाजिक स्वरूप में मनोवैज्ञानिक गहराई में व अन्य साहित्य से अलग कैसे और कहाँ पर है? चौथा, दलित व नारीवादी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या हो? क्या पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र प्रतिमानों की कसौटी पर इस साहित्य का मूल्यांकन हो सकता है अथवा इस साहित्य के मूल्यांकन के लिए नए सौंदर्य शास्त्र के निर्माण की आवश्यकता है? पांचवा, दलित व नारी केंद्रित साहित्य की संभावनाएं व सीमाएं क्या हैं? इस साहित्य की विश्व दृष्टि का स्वरूप क्या है? दलित व नारीवादी साहित्य संबंधी ऐसे और प्रश्न भी संगोष्ठी में उठ सकते हैं। सातवें दशक तक आते आते भारतीय समाज के महत्वपूर्ण घटकों दलित व नारी समूहों में अपनी अस्मिता की चेतना बढ़ी। यही चेतना दलित व नारीवादी साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। दलित चेतना के विकास में बौद्ध दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर व ज्योतिबा फूले के विचारों के साथ साथ मार्क्सवादी विचारधारा का भी योगदान है। नारी चेतना के विकास में पाश्चात्य चिंतन और मार्क्सवाद का योगदान है। आधुनिक संदर्भों में भारतीय दलित साहित्य का आरंभ महाराष्ट्र में मराठी भाषा में होता है। 1960 के आसपास मराठी में दलित शब्द अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। अस्मिता व अस्मितादर्श पत्रिकाएं व औरंगाबाद नगर दलित साहित्य की आधार भूमि बनकर उभरते हैं। मराठी दलित साहित्य ने आत्मकथा विधा को नया आयाम प्रदान किया। मराठी दलित लेखकों ने जिस प्रकार अपनी आत्मकथाएं लिखी, ये आत्मकथाएं अपनी पीड़ा की संवेदनशीलता अभिव्यक्ति से श्रेष्ठ साहित्यिक उपलब्धियां बन गई। मराठी में अब तक 30 के करीब आत्मकथाएं रची गई हैं, जिनमें अनेक का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। हिंदी अनुवाद में इन आत्मकथाओं को उपन्यास रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि इनके मूल मराठी लेखकों को इन्हें आत्मकथा कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन साहित्यिक स्तर पर इन रचनाओं में औपन्यासिकता के गुण विद्यमान हैं। कुछ चर्चित मराठी दलित कथाएँ आत्मकथाएँ हैं, दया पवार कृत बालंतु अछूत, पी सोनकामले कृत अठावनीच पक्षी यादों के पंक्षी, लक्ष्मण माने कृत ऊपरा यानी पराया, लक्ष्मण गायकवाड़ कृत उचाल्या यानी उठाईगीर, शरण कुमार लिम्बाले कृत अक्करमाशी। इस बीच मराठी में दलित नारी आत्मालेखन भी हुआ है। इनमें कुमुद पावड़े कृत अंत स्फोट, बेबी कांबले कृत जीना अमुचाई, मल्लिका अमरशेख कृत माला उद्धव वस्त्र, न्याचा आदि आत्मकथाएं चर्चित हुई हैं। वास्तव में दलित व नारी केंद्रित लेखन में दलित नारियों की आत्मकथाएं दोनों प्रवृत्तियों का समान बिंदु है और जिस पर विद्वानों को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मराठी दलित साहित्य कहानी भी अत्यंत समृद्ध है। बाबूराव बागुल, योगीराज बाघमारे, अर्जुन डांगले, केशव मेश्राम, अन्ना भाऊ साठे ने दलित मराठी कहानी में विशेष नाम अर्जित किया है। बाबूराव बागुल की कहानी जीवा में जात चोरली होती, जब मैंने अपनी जात छिपाई, तो इस परंपरा की क्लासिक रचना है। इस कहानी से जाति व्यवस्था की क्रूरताओं का कुछ अनुमान हो सकता है। मराठी दलित कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं नारायण सुर्वे, नामदेव ढसाल, अरुण कामले, जेवी पवार, शाहिद अमर शेख व दया पवार इत्यादि। महाराष्ट्र के पश्चात उसके पड़ोसी राज्य गुजरात में गुजराती दलित साहित्य विकास की ओर अग्रसर है। गुजराती दलित साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं हरीश मंगलम, जोसेफ मकवाना, राजू सोलंकी, प्रवीण गढ़वी, जयंत परमार, दलपत चौहान इत्यादि। कन्नड़ साहित्य में यूआर अनंतमूर्ति के उपन्यासों संस्कार व भारतीपुर तथा घटश्राद्ध आदि कहानियों में दलित जीवन की अनुगूज स्पष्ट सुनाई देती है। घटश्राद्ध व संस्कार पर बनी फिल्मों में तो यह अनुगूज आर्तनाद का रूप धारण कर लेती है। आधुनिक कन्नड़ लेखकों में के सिद्ध लिंगटैया ने दलित जीवन कवि के रूप में पहचान स्थापित की है। पंजाबी में गुरदयाल सिंह के मढ़ी दा दीवा व अणहोए उपन्यास, कृपाल कजाक, प्रेम गोरखी आदि भी दलित धारा को समृद्ध कर रहे हैं। भारतीय अंग्रेजी कथा साहित्य में 1932 में मुल्कराज आनंद का सर्वप्रथम प्रकाशित उपन्यास अनटचेबल दलित जीवन को केंद्र में रखता है। उनकी परवर्ती रचनाओं कुली आदि में भी दलित जीवन का चित्रण मिलता है। हाल के वर्षों में मुल्कराज आनंद ने अमेरिकी विद्वान जीलियट इलियानोर के साथ मिलकर भारतीय दलित साहित्य के महत्व को रेखांकित करने वाली पुस्तकें प्रकाशित की हैं। हिंदी में सितंबर 1914 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत से दलित लेखन की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी के तमाम बड़े कवियों निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल आदि ने दलित जीवन पर कविताएं रची हैं। धूमिल की मोचीराम, बाबा नागार्जुन की हरिजन गाथा तो इस काव्यधारा के प्रतिनिधिक रचनाएं बनकर उभरती हैं। श्री माता प्रसाद ने हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा पुस्तक में सैकड़ों ऐसी कविताएं संकलित की हैं जो दलित जीवन को केंद्र में रखकर रची गई हैं। हिंदी कथा साहित्य में भी दलित जीवन को केंद्र में रखकर अनेक रचनाएं की गई हैं। प्रेमचंद की कहानियां सदगति, ठाकुर का कुआं, कफन आदि दलित जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति करती हैं। निराला कृत कुल्ली भाट, चतुरी चमार, अमृतलाल नागर कृत नाच्यो बहुत गोपाल, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास त्रयी धरती धन्नापना, नरक कुंड में वास व जमीन अपनी तो थी, गिरिराज किशोर कृत परिशिष्ट, मधुकर सिंह कृत उत्तर गाथा, मन्नु भंडारी कृत महाभोज, मनमोहन पाठक कृत गगन घटा घराई, पन्नी सिंह कृत पाथर घाटी का शोर, जयप्रसाद कर्दम कृत छप्पर आदि उपन्यासों और शिवमूर्ति, सजीव, हबीब कैफी, हृदयेश आदि की कहानियों में दलित जीवन की पीड़ाएं अंकित हुई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रायः सभी भाषाओं में दलित जीवन को अंकित करने वाली असंख्य रचनाएं मिलती हैं। जहां मराठी में दलित साहित्य एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, वहां वह अन्य भाषाओं में अब यह आंदोलन का रूप लेने की प्रक्रिया में है। अखिल भारतीय स्तर पर दो दलित सम्मेलन हो चुके हैं। पंजाबी में पहला दलित सम्मेलन संपन्न हो चुका है। अब आवश्यकता इस बात की है कि दलित साहित्य व इससे जुड़े सांस्कृतिक आंदोलन को पूर्वाग्रह मुक्त होकर व सुगत रूप में समझा जाए। यह संगोष्ठी भी इसी दिशा में एक प्रयास है। भारतीय साहित्य में नारी केंद्रित व नारीवादी साहित्य अभी सांस्कृतिक आंदोलन तो नहीं, लेकिन एक वैचारिक आंदोलन के रूप में अवश्य प्रस्तुत है। नारी केंद्रित अथवा नारीवादी लेखन में कौन सा लेखन नारीवाद के दायरे में है व कौन सा लेखन इस दायरे से बाहर, यह प्रश्न भी विद्वानों के सामने विचारणीय है। बहरहाल अनेक स्त्री लेखिकाओं ने प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में अपने लेखन द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समकालीन नारी केंद्रित लेखन केवल करुणा विगलित या नारी को श्रद्धा रूप में महिमा मंडित करने वाला लेखन नहीं है। यह लेखन सामाजिक स्तर पर स्त्री के पुरुष के साथ हर क्षेत्र में समानता की प्रतिस्थापना को अधिकार चेतना का लेखन है। यह लेख केवल नारी के उत्पीड़न की ही नहीं, इसके प्रतिरोध के भी अंकित करता है। ऐसे विशिष्ट नारी लेखन के लिए जिन लेखिकाओं ने अपनी अलग पहचान स्थापित की, इनमें कुछ हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे हिंदी, अमृता प्रीतम पंजाबी, रंग नायकम्मा तेलुगु, राम राजम कृष्णन तमिल, एम टी इंदिरा कन्नड़, माधवी कुट्टी, सुगता कुमारी मलयालम, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी बंगला, प्रतिभा राय उड़िया, इंदिरा गोस्वामी असमिया, वर्ष अदालजा गुजराती, बेबी काम्बली मराठी इत्यादि। नई सामाजिक परिस्थितियाँ नई सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। विश्व को एक बाजार बनाने व उदारीकरण से उत्पन्न आधुनिकीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद इस तथ्य से आंखें नहीं मूंदी जा सकती कि भारतीय समाज में सामंती अवशेष अभी मौजूद हैं व इन सामंती संस्कारों से मुक्ति हासिल किए बिना समाज सही मायनों में गतिशील नहीं हो सकता। भारतीय साहित्य में प्रतिबिंबित दलित व नारी जीवन का चित्र इन सामंती संस्कारों के प्रति विद्रोह तथा समाज के जनतांत्रिकरण की पुकार है। जनतांत्रिकरण के इस प्रकार में अनेक जटिल अंतर्विरोध भी शामिल हैं जो कई बार समाज में जातिगत भेदभाव को समूल नष्ट करने के बजाय जाति समीकरण बदलकर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की चाल भी चलते हैं। इसी प्रकार नारीवादी लेखन में भी यह अंतर्विरोध मिल सकता है कि समूची मानवता की मुक्ति के बजाय एक उत्पीड़ित समूह उत्पीड़क वर्ग में बदल जाए, लेकिन सच्चा दलित व सच्चा नारीवादी लेखन समूची मानवता की मुक्ति का आकांक्षी होता है। किसी सामाजिक चिंतन का कथन है कि वास्तव में स्त्री की मुक्ति में ही पुरुष की मुक्ति भी शामिल है, उसी प्रकार दलित वर्ग की मुक्ति में ही पूरे समाज की मुक्ति निहित है। सच्चे दलित व सच्चे नारीवादी लेखन का उद्देश्य एक ऐसे जनतांत्रिक समाज के निर्माण की प्रेरणा प्रदान करना है जिस समाज में जाति, लिंग, रंग, वर्ग या आयु के आधार पर मनुष्यों के बीच भेदभाव या ऊंच नीच का विस्तार न हो। दलित व नारी जीवन पर केंद्रित भारतीय साहित्य ऐसे स्वस्थ व जनतांत्रिक मूल्यों की तलाश का साहित्य है, जिसमें अब स्वच्छ पर्यावरण की चिंता भी शामिल हो रही है।